नारायण 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 नारायण। बड़ा दिव्य और अद्भुत प्रसंग चल रहा है। हम लोगों को नित्य कोई नई बात सीखने को मिल रही है। हम में माने हम भी उसमें जुड़े हुए हैं। बहुत विशिष्ट लोगों के बीच का संवाद है, श्री नारद और वसुदेव जी का संवाद है, नवयोगीश्वरों और जनकराज निमि का संवाद है, उन्हीं का संवाद यहां दोहराया जा रहा है। उत्तम श्रेय की प्राप्ति की जिज्ञासा की है राजर्षि निमि ने, और तत् भागवत धर्मों आदि का वर्णन करने के अनुसार अनंतर श्री प्रबुद्ध योगीश्वर ने तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम श्रेय की आपने जिज्ञासा की है, उत्तम श्रेय की जिज्ञासा के लिए गुरु की प्रपत्ति करें। जो शाब्द ब्रह्म में और परे ब्रह्म निष्णात हो, उपसमाश्रित हो, और वहां भागवत धर्मों की शिक्षा प्राप्त करे, गुरु से जिसे अत्यंत प्रिय और अत्यंत पूज्य माने। जब तक गुरु को अत्यंत पूज्य और अत्यंत प्रिय नहीं मानेगा, तब तक गुरु के वचनों में दृढ़ता नहीं आती है, दृढ़ भावना नहीं होती है। बिना दृढ़ भावना के ये जो दृढ़ अतस्मिन तद्बुद्धि हो गई है, वो अतस्मिन तद्बुद्धि निवृत्त नहीं हो। अन्य आवश्यकताएं तो जो है ही, गुरूप शक्ति अपने अहंकार की निवृत्ति के लिए की जाती है। गुरु एक ऐसी खूंटी है जिसमें अपना अभिमान टांग दिया जाता है, यह टांगा जा सकता है, अपना अभिमान त्याग। कभी कभी जैसे डॉक्टर को नाना प्रकार के कठिन साधनों का पीड़ा पूर्ण उपचारों का आश्रय लेना पड़ता है, वो पीड़ा पूर्ण आचरण रोगी के रोग की निवृत्ति के लिए है। गुरु की क्रूरता या कठोरता नहीं है। परिभाषा के अनुसार ही गुरु क्रूर या कठोर हो ही नहीं सकता है। माता कभी क्रूर नहीं हो सकती है, कठोर नहीं हो सकती है। दिखाई पड़ती बहुत बार बड़ी कठोर दिखती है, लेकिन उसका तात्पर्य कठोरता में नहीं है। राजस्थान में वैष्णवों का एक संप्रदाय है जिसे खोजी संप्रदाय कहते हैं। एक संत हुए हैं, उनका नाम तो कुछ और है, लेकिन उनका नाम खोजी बाबा हो गया। उनका नाम खोजी बाबा कैसे पड़ा, यह ऐतिहासिक घटना है। खोजी बाबा अपने गुरु जी के साथ गए थे लवशंका करवाने के लिए। जब बाहर हम लोग लघुशंका करने के लिए जाते हैं तो साथ में कोई जाते हैं, साथ में जल लिए रहते हैं, जल देते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। तो कोई साथ में जाते हैं, नहीं होते तो अपने हाथ में लेके जाते हैं, अकेले होते हैं, लेकिन कोई साथ रहता। तो खोजी बाबा अपने गुरु के पास साथ उनको लघुशंका कराने के लिए गए। गुरुजी लघुशंका कर ही रहे थे कि उनको वहां हंसी आ गई, और ऐसी जोर की हंसी आई कि हंसी रुकी ही नहीं। हंसते चले जा रहे, हंसते चले। गुरुजी को हंसते देख करके खोजी बाबा भी हंसने लगे, जैसे कोई खांस रहा तो दूसरे को अपने आप खांसी आ जाती है, अगर कोई हमको देख के मुस्कुराए तो अपने आप मुस्कुराहट अपने आप ना, कोई हंस रहा हो तो कुछ कुछ अपने हंसने का मन करता है। तो वो खोजी बाबा गुरुजी को हंसते देख करके वो भी हंसने लगे। अभी अभी गुरुजी ऐसे हंस रहे थे, लोटपोट हुए जा रहे थे, कूदे फांदे जा रहे थे, जैसे ही खोजी बाबा को हंसते देखा तो सीरियस हो गए, क्यों हंस रहा है? ऐसी जोर की डांट लगाई खोजी बाबा तो सन्न हो गए, चुप हो गए, सारी हंसी काफूर, क्यों हंस रहा है? अब जब ऐसी डांट पड़ती है तो अच्छों अच्छों की बुद्धि अगर थोड़ी बहुत होती वो भी चली जाती है, ये बहुत लोग बताते हैं, ये महाराज बहुतों का अनुभव है, हम क्या बताएं। तो डांट पड़ी तो जो थोड़ी बहुत बुद्धि थी वो और चली, बोले ही नहीं, क्या बोले गुरु जी से, फिर बचा, क्यों हंस रहा था बोल। गुरुजी आप हंस रहे थे इसलिए हमको भी हंसी आ गई, आपको देख के हम हंसने लगे, मैं क्यों हंस रहा था? अब कौन कहे कि आप क्यों हंस रहे थे? डांट के मारे सिट्टी पिट्टी वैसे ही गुल थी, मैं क्यों हंस रहा था? अब कोई क्यों हंस रहा था कैसे पता चले? बताओ मैं क्यों हंस रहा था, तू क्यों हंस रहा था? मालूम है, चल निकल यहां, निकल निकल आश्रम से, उठा। अरे बाप रे बाप, उठाओ आश्रम, निकलो आश्रम से, निकल। ऐसे नाराज हुए माई डियर, ऐसे नाराज हुए कि वो तो बेचारा मरा ही नहीं, बस इतना ही हुआ। तो अनुभव की बात है कि गुरु का वियोग कितना कष्टकर होता है, ये तो शिष्य ही समझ सकता और किसी को समझ नहीं आता। या प्रिया का वियोग कैसा होता है, प्रियतम का वियोग कैसा होता है, ये तो जिसने प्रेम किया है वही जानता है। उठाओ आसन, निकलो, भगो यहां से, मुंह नहीं दिखाना मेरे को। अब कोई समझदार सोचेगा अगर बेचारे चेला ने थोड़ा हंस दिया तो ऐसा सीधे ही फांसी का दंड, निकल आश्रम से, और ऐसी जोर से कि अब भगो यहां से, मुंह नहीं दिखाना मेरे को। इतनी सी बात के लिए इतना भयंकर दंड, चरणों में गिर पड़ा, क्षमा कर, कोई जाने निर बट भैया निर छूना नहीं, मुंह नहीं दिखाना। गुरु जी कोई रोने लगे, अच्छा ठीक है, जिस दिन तुझे ये पता चल जाए कि मैं क्यों हंस रहा था, उस दिन तो मेरे पास आ जाना, मैं तुमको स्वीकार कर लूंगा। चलो निकलो। अब बेचारा गुरु की आज्ञा थी, निकल गया। हमारे बाबा लोगों में अब तो थोड़ा कम हो गया है, वरना सबसे बड़ा दंड यह था चलो उठाओ आसन। उठाओ आसन माने अपना आसन उठाओ और गच्छ करो। अब साधु ही नहीं बचे हैं, कहां से कोई उठाओ आसन। पहले तो हुआ करता था, हमको याद नहीं रबड़ी वह कितने वर्षों से किसका आसन उठवाया गया, हमको याद वाद नहीं है। पहले कॉमन था किसी ने उठाओ आसन, चलो घूम जाओ। वो कोई द्वेष के लिए नहीं किया जाता था, बाहर जाओगे धक्का खाओगे तो सीखोगे, इसलिए। तो खैर खोजी बाबा को, निकाल बाहर किया, निकल गए बेचारे। अब गुरु के वियोग की क्या पीड़ा होती है, क्या कष्ट होता है, जाके कांटो लगे वही जाने। बेचारे निकल गए, कहां जाए, संतों में ही जाए, सत्संग में ही जाए, यात्रा करे, लेकिन गुरु के वियोग के कारण वो निरंतर दुखी है। कई लोगों से पूछा, किसी से क्या पूछे कि गुरु जी लोग शंका कर रहे थे, हंसने लग गए और मैं हंसने गया, मेरे को निकाल बाहर किया, किससे कहें। ऐसा सुना जाता है, अब ऐतिहासिक लोग जाने, वो कबीरदास जी के पास गए घूमते घामते। कबीरदास ने कहा, अरे तू उदास, हरि का दास कभी ना हो उदास, गुरु का लाल होकर के तू हंसता रो रहा है, हंसना चाहिए, क्यों तू उदास है। उदास रहना, रोना गाना तो उन लोगों के लिए है, तू तो छोड़ के आ गया है, क्यों। तो रो पड़े संत के चरण में, गुरु जी मैं गुरु जी के वचन के आशा है इसलिए जी रहा हूं, मन तो मेरा करता है कि मैं मर जाऊं, शरीर छोड़ दूं, अब जीवन किसी लायक है नहीं। क्या बात है, तुमने सब घटना बताया कि जब ये शरीर गुरु की सेवा में नहीं आ सकता है तो इस जीवन को धारण करके शरीर को धारण करने की आवश्यकता क्या है। मुझे गुरु ने निकाल दिया है, मैं गुरु का अपराधी हूं। कबीरदास जी तो महापुरुष, समझ गए गुरु का कोई अपराध होते ही नहीं, गुरु कभी अपराध जानते ही नहीं है, कोई ना कोई गुरु का नाटक है। क्या घटना हुई, तो उन्होंने पूरी बात बताई कि गुरु जी ऐसे ऐसे लघुशंका करने गए थे और वो बहुत जोर से हंसने लग गए, उनको हंसता हुआ देख करके हम हंसने लग गए और इस पर गुरु जी नाराज हो गए। अच्छा, गुरु जी जहां लघुशंका कर रहे थे वहां का जरा जगह का वर्णन करो। तो महाराज आश्रम से बाहर गए थे जंगल में, सामने एक बट का पेड़ था, उस बट के पेड़ की छाया से थोला पहले उसी तरफ मुंह करके लघुशंका कर रहे थे। कुछ मर्यादाएं, अब आप लोग जान लो, आप लोगों को जरूरत तो है नहीं, फिर भी बता दिया जाता है, सूर्य की कभी बाहर जाना पड़े तो सूर्य की ओर कोई ब्राह्मण यति मंदिर हो उसकी ओर, गऊ हो उसकी ओर मुख करके लघुशंका नहीं करना चाहिए, सूर्य की ओर मुख करके भी लघुशंका नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसी तीर्थ स्थल में हो तो थोड़ा ताली बजा करके लघुशंका करो हल्के से, क्योंकि वहां कई दिव्य आत्माएं होती हैं। जब सीजी में रमणीति में आए थे तो गुरु महाराज ने हमको सिखाया था, बेटा ताली बजा करके थोड़ा धीरे से लघुशंका करना और ये प्रार्थना कर लेना, मन ही मन, बोलने की जरूरत नहीं, कि मैं किसी का जानबूझ के अपमान नहीं कर रहा हूं, मुझे ज्ञात नहीं, अगर अनजाने में किसी का अपराध हो तो मुझे क्षमा करना, और इत्यादि करके लव शंका करने के बाद कुल्ला करे बाईं तरफ कुल्ले के भी कोई, और उसके बाद उसको पैरों से मिट्टी को ढक दे तो कवर्ड हो जाए। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है कि सिवाय और कोई एक दिशा के और मौका नहीं लोग शंका करने, तो क्या करे, तो आगे हाथ से आड़ कर ले, ऐसे सूर्य या और कुछ है तो ऐसे आड़ कर ले, जैसे देव मंदिर में पानी नहीं पिया जाता है खरबूजे का, लेकिन अगर कोई अगति हो तो ऐसे रुमाल कर लिया और जल पी लिया, पीना नहीं चाहिए सत्संग में, तो इसी तरह से करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति पड़ जाए तो हाथ से ऐसे छाया कर ले। तो गुरु जब वहां लव, तो इसीलिए गुरु जी हां पेड़ की छाया में लव शंका नहीं करें, कहीं राख पड़ी हो तो उस राख के ऊपर लव शंका नहीं करें। ये सब कुछ साधन है, तो इसलिए गुरु जी ने पूछा कबीरदास जी ने कि वो क्या लव शंका कर रहे थे, तो बता दिया कि वहां स्थित था और वट का पेड़ था, उससे थोड़ा पहले लव शंका कर रहे थे, वो लव शंका करते ही करते हंसने लग गए, लोटपोट हो गए। अच्छा, अब तुम आधे यहां से जाओ, सीधे गुरु जी का दर्शन करो जाके। हंसने लग गए और रोने लग गए, आप कह रहे तो मुझे प्रसन्नता हो रही कि इतने वर्षों बाद मुझे गुरु के दर्शन मिलेंगे, लेकिन जाऊं किस मुंह से, उन्होंने मना किया था जब तक कि तुमको ये पता न चले कि मैं क्यों हंस रहा था तब तक मेरे सामने आना नहीं, निकल, मुंह नहीं दिखा रहा, जाओ मैं तुमको बता देता हूं ये काम ये हुआ था, जा बताते रह जाके गुरु जी को। आया गुरु जी को पढ़ा, और गुरु जी समझ तो गए, आ ही नहीं सकता जब तक उसको काटा पड़ता था, लेकिन नाटक तो करना ही है, कैसे आए, तुमको मना क्या था, मुनि देखा निकलो यार, कैसे बोल रहे जान भाई, गुरु जी आपने कहा था ना कि मेरे हंसने का कारण मालूम पड़ जाए तो आना, इसीलिए हिम्मत कर रहा हूं। अच्छा बता क्यों मैं हंस रहा था, तो उसने कहा गुरु जी आप जब लघुशंका कर रहे थे तो आपके लघुशंका के वेग के कारण बट का बीज इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं तैर रहा था, इधर उधर भटक रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, आपको वही देख के हंसी आई थी ना, किसने बताया, ये तुमको किसने बताया, तुमने बताया कि कबीरदास जी ने बताया। देखो यही सिखाना था तुमको, जिसने आश्रय नहीं प्राप्त किया है वो वट का बीज, जिसको अभी आश्रय नहीं मिला है वो अनाश्रित बीज जरा से लघुशंका के कारण इधर इधर ऊपर नीचे होने लगता है, और उसी बट के बीज को अगर आश्रय मिल जाए, अंकुरित हो जाए, वृक्ष बन जाए, तो बड़े बड़े हाथी भी उससे बांधे जा सकते हैं। जो गुरु के आश्रित नहीं है वो इसी तरह भटकता रहता है, जिसको गुरु और इष्ट आश्रय प्राप्त हो गया वो दृढ़ हो जाता है, बहुत से भटकाओं का भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। गुरुजी यही तात्पर्य, हाँ बस तुमको यही समझाने के लिए मैंने क्रूरता की थी, मेरा क्रूरता का कोई तात्पर्य था, ये बात तुझे अगर मैंने कह दी होती तो प्रभाव नहीं पड़ता। अब तूने अपने आप खोज करके इस रहस्य को प्राप्त किया, अब ये तुम्हारी चीज है, जिंदगी भर हर चीज को देखना हेतु क्या है। जो निराश्रित है वो जरा से उद्वेग से भटक जाएगा, और जिसको आश्रय प्राप्त है वो बड़े बड़े झंझा बातों से अपनी रक्षा तो करेगा ही, उसके आश्रय में आकर के अन्य लोगों को भी झंझा बातों से बचने का आश्रय प्राप्त होगा। अगर गुरु की डांट सुनकर एक जने ने यहां घटना नहीं है, अभी कुल कुछ यहां आने के दो दिन पहले घटना है, अच्छा जा रहा हूं, वो आत्म प्रचार हो जाए, तो उनका नाम खोजी बाबा प्रसिद्ध हो गया। उनके जीवन की एक और घटना है, वो भी बता देता हूं। साक्षात इस विषय से तो उतना जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम अलग भी नहीं है। उनके गुरुजी बड़े सिद्ध थे, तो उन्होंने खोजी से कहा था कि जब मैं मरूंगा तो विमान आएगा और देवता लोग भेरी नाद और नगाड़े बजाएंगे, गुरु ने कहा विश्वास कर लिया। चांस की बात है, गुरु जी के जब अंतिम श्वासों का समय आया उस समय खोजी बाबा कहीं गए हुए थे, गुरु जी का शरीर शांत हो गया, लेकिन कोई नगाड़ा वगैरह नहीं बजे, कोई भेरी वेरी नहीं बजी। अच्छा जब इनको पता चला कि हमारे गुरु जी का शरीर शांत हुआ, तो अपने गुरु का अंतिम समय दर्शन, जैसे हर एक इच्छा थी मैं अपने मां बाप के अंतिम श्वासों के सामने वहां उपस्थित रहूं, मेरे पति का शरीर शांत हो तो मैं वहां रहूं, मेरी पत्नी का शरीर शांत हो तो मैं उसके पास रहूं, उसी प्रकार गुरु का शरीर शांत हो तो शिष्य का मन होता है कि मैं गुरु के पास रहूं। खोजी बाबा को इन्हें तो बहुत दुखी हुए, लौट करके आए पता चला तो बहुत दुखी हुए। खैर फिर पूछा जब गुरुजी गए तो नगाड़ा बजे कि नहीं बजे, विमान आया कि नहीं आया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, तब गुरु जी कहीं गए नहीं, अभी यही है। अरे हम तो कर आए काम, क्या गुरु जी ने जब अंतिम सांस ली तो कहां थे, तो इस तरह से लेटे हुए थे, इधर की ओर मुंह करके लेटे थे। खोजी बाबा को अपने गुरु के वचनों पर विश्वास था, तो जहां गुरु जी लेटे थे उसी जगह वो लेट गए, और लेट करके इधर देखने लग गए, सामने एक बड़ा सुंदर पका हुआ आम पेड़ पे लगा हुआ था। खोजी बाबा उठे, उठ करके उस आम को तोड़ा, बड़ा सुंदर आम, उसमें एक छेद था, उसी जगह खोला, उसमें एक कीड़ा था, उस कीड़े को निकाला बाहर, जैसे ही धरती पे डाला वो मर गया, और तुरंत नाद बिंदु साहब नगाड़े बजने लग गए, विमान आया उड़ के चले गए। ऐतिहासिक घटना है, भक्तमाल में इसका वर्णन है। इस तरह से लिखा है अमाया अनुवृत्या ये स्तुष्येत आत्मदोहरी। गुरु की सेवा करते समय मन में कपट न रखे, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए का अमाया अनुवृत्तिया, जितनी भी वृत्ति हो वो गुरु की प्रसन्नता के लिए ही है। सबसे बढ़ के बात निष्कपट भाव से सेवा है। अमाया आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि निष्कपट भाव से सेवा करो। तो माय डियर, संस्कारों के कारण अनजाने में ही कई लोग गुरु की सेवा करते समय भी कपट रखते हैं। सेवा करने का लाभ तो प्राप्त होगा लेकिन जो परम लाभ है वो नहीं प्राप्त होगा। निष्कपट भाव से जो स्थितियों सीधे सीधे बता दे, गुरु महाराज हमारे कहते थे हम धोबी हैं, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए मुझे दे दो, हम धो करके तुमको दे देंगे। तुम्हारे मन में कुछ इस तरह की बात आए तो बता दिया, क्योंकि कुछ गुरुओं की क्रिया समझ में आती नहीं, बड़ी उठपटा। ये ऋषिकेश में अगर जाओगे शिवानंद आश्रम से और आगे बढ़ो, लक्ष्मण झूला से भी आगे एक जगह, उसका नाम वशिष्ठ गुफा है। हमको अब तो जाने को नहीं मिला, हम 60s में वहां गए थे, उस गुफा के अंदर बैठे भी थे, दोपहर को फलाहार भी किया था। गंगा के एकदम किनारे बड़ा दिव्य स्थल है वो, वशिष्ठ जी का आश्रम है, इसीलिए उसका नाम वशिष्ठ गुफा है, बड़ा दिव्य स्थल। कभी अब तो वहां ये राफ्टिंग फैफ्टिंग वाले दुनिया भर के पहुंच गए हैं, ठीक है अच्छा है, लेकिन हम जिस समय गए थे तो अद्भुत था। लगता है राजा दिलीप यहीं पे नंदिनी की सेवा के लिए वशिष्ठ जी की आज्ञा से संलग्न हुए थे, क्योंकि वहां वर्णन आता है कि हिमालय की शोभा वो निरखने लग गए थे और तब शेर ने गैया के ऊपर झपट्टा मारा था, तो हिमालय में आश्रम था वही आश्रम। तो ऐसा हमने संतों सुना, कहीं किसी जगह लिखा तो हमने देखा नहीं, हमको नहीं मिला है, लेकिन संतों से हमने सुना, इसलिए बता रहा हूं, संत के वचन भी प्रमाण है कि वशिष्ठ जी वहां और गुफा में से बाहर निकले थे, आलू लगा रहे थे, एक हाथ से रोटी खाते जा रहे और एक हाथ से आलू लगाते जा रहे। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न, वाह बड़ा अच्छा हो गया, गुरु जी जब मॉडर्न हो गए, खाते जा रहे हो, काम करते जा रहे, कोई जूठा कूठा नहीं है, चलो नहीं तो मार, ये करो वो करो, आज लकड़ी धो, पानी लाओ, ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, अरे तुमने झूठे यहां से छू लिया। यारे बहुत लोग हमको परोसने में इसीलिए घबराते हैं, क्योंकि गुजरात में तो झूठे कूठे का कोई बहुत अधिक नाटक है ही नहीं, और हम लोगों के वो संस्कार है, मैं क्या करूं, घबराते हैं। लक्ष्मण जी बड़े खुशी, वाह बड़ा मौज हो गई। राम जी ने श्री वशिष्ठ जी को बुलाया था, यज्ञ है उसमें आप पधारो, तो वशिष्ठ जी चल दिए वहां से, तो ऋषिकेश से वहां चले, वशिष्ठ गुफा चले, ऋषिकेश आए, ऋषिकेश से आते आते नीचे 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 सत्यनारायण जी का जहां मंदिर वहां तक, उसके और आगे जैसे ही हरिद्वार पार किए, कनखल आए, बस तुरंत हाथ मुंह धोना और ये लक्ष्मण क्या चौका लगाओ ओ, वहां देखो ऐसे लकीर करो, लकड़ी धो करके शुद्ध करके लाओ, हाथ मुंह धो के लाओ, ऐसे ले चलो हाथ मुंह धो। लक्ष्मण जी ने कहा अरे गुरु जी भी ढोंग करने लग गए, अभी वहां तो ऐसे ही झूठ कूट कुछ नहीं मौज, और यहां आकर के अब राज्य की तरफ चल रहे तो हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग, थोड़ा कुरूर कुरूर हो गया। ये नाटक गुरु जी कर रहे हैं। गुरुओं का तो अभ्यास है, वो जान जाते हैं कुछ खुट खुट है। तो लक्ष्मण जी भैया क्यों बेटा सब ठीक है ना, कोई बात है? नहीं कुछ आखिर में आखिर दया क्या सर, बहुत आनंद बहुत आनंद। और मालूम था अगर कोई बात हो तो बता दो, मैं उसको ठीक कर दूंगा। तब लक्ष्मण जी ने कहा गुरु जी आप बुरा न माने, मुझे मालूम है सही है, लेकिन मेरे मन में जो शंका आई वो बता दे रहा हूं। आप जब अपने आश्रम में थे गुफा में तो कोई ये सफाई शुद्धि झूठ ये कुछ नहीं नाटक, यहां तक जब तक हरिद्वार के पहले पहले तक वही नाटक चला, अब हम लोग राज्य की तरफ चल रहे हैं तो अब यहां धो कुल्ला करो चौका लगाओ बर्तन मांजो ये सब नाटक क्या है? तो गुरु जी ने कहा हास्य लग गया, अगर तुमने न पूछा होता निष्कपट भाव से तुमके जीवन में भर शंका रह जाती। गुरु बेटा उत्तराखंड में वायु से शुद्धि होती, ये हमारे संतों में और साधकों में ये प्रचार है। प्रचार क्या है? निर्णय है कि उत्तराखंड में बहुत शुद्धि की आवश्यकता नहीं, वहां हवा लग जाए उत्तराखंड तो शुद्ध हो जाता है। उसका कारण भी है, हमारे यहां किसी भी कर्म के लिए इसीलिए कहा जाता देश काल, ये उस संकल्प में ये देश का उच्चारण करते हैं कि हम हमारे आचार्य गण बैठे हैं कहां है, पहले देश का ही उच्चारण करते हैं कि ओम विष्णु 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 अदसी ब्रह्मणो निद्वितीय प्रारसी श्वेत वारा कल्पे जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारत वर्षे नर्मदाया दक्षिणे पार्श्वे या विंध्यस्य दक्षिणे पार्श्वे मुंबई नगरिया महाराष्ट्र प्रदेश है। ये सब देश काल का गान क्यों किया जाता है? काल का गान क्यों किया जाता है? हम हर कर्म लकीर के फकीर बनकर के नहीं करते। हमारे ऋषियों ने देश काल परिस्थिति के अनुसार आचरण करने का विधान बना रखा है। अब जैसे श्री रावल जी जो बद्रीनाथ के पुजारी हैं, हम सब के प्रतीक के रूप में भगवान बद्रीनाथ की सेवा करते हैं, वो जब बद्रीनाथ की सेवा करते तो लबादा वबादा पैजामा हजामा सब पहन करके करते हैं, और वही नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। अगर वो केरल में हो तो केवल यहां तक कपड़ा पहनेंगे, ऊपर दुपट्टा भी नहीं होगा, नंगे पैर दुपट्टा अगर होगा तो उठा के कमर में कस लेंगे फिर पूजा करेंगे। अब कोई पूछे कि वही पंडित जी जब केरल में थे तब तो इस तरह कर रहे थे और बद्रीनाथ में आते पूरा झग्गा पहन रखा है, कैसे कहीं कार्य करेंगे? कैंकर की विधि ये। तो माई डियर अगर दक्षिण में है तो कैंकर्य की विधि वो है, और अगर बद्रीनाथ में है तो कैंकर्य की विधि ये है। क्या कारण? बद्रीनाथ का टेम्परेचर अब तो खैर थोड़ा ठीक हो गया है, जब हम लोग शुरू में जाया करते थे, आजकल तो बद्रीनाथ में कभी इतनी बड़ी झाड़ी भी नहीं होती थी, अब तो मैंने वहां देखा पेड़ लग गए हैं, इतना टेम्परेचर बदल गया है, गोमुख कहां से कहां चला गया है। तो उस जमाने में खीर गर्मा गर्म डालो पत्तल में और उठाते उठाते ऐसी ठंडी हो जाएगी खाई नहीं जाए। तो वहां अगर इसी तरह से कपड़े पहन के नंगे जाएंगे तो सेवा करेंगे कि उनकी सेवा और करनी पड़ जाएगी। तो वहां और साइंटिफिकली भी है, हम सबको मालूम है पहाड़ के ऊपर इन्फेक्शन नहीं होता है ठंडी के कारण और वहां की वायु की शुद्धि के कारण। दक्षिण में टेम्परेट होता है, अरे ये इडली का वो या डोसे का वो बनाते हैं ना मिक्स, चावल और उड़द की दाल डाल करके, तो दक्षिण में अगर उसको रख दो तो 10 घंटे के अंदर बाल्टी भर जाएगी, और अगर हरिद्वार में करना हो तो और बद्रीनाथ में करना हो तो जल्दी होएगा ही नहीं, उसमें कुछ डालना पड़ता है तब जाके फर्मेंट होता है। क्यों? वही गर्मी में फर्मेंटेशन जल्दी होता है, गर्मी में इन्फेक्शन जल्दी होता है। हॉस्पिटल को एयर कंडीशन या ऑपरेशन थिएटर को एयर कंडीशन इसी दे रखा है। तो इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारे यहां विधान है। तो बेटा उत्तराखंड में इन्फेक्शन नहीं होता है, ये इन्फेक्शन तो नहीं कहा उन्होंने, ये तो हम आप लोग जो पढ़े लिखे उनको समझाने के लिए कह रहे हैं। उत्तराखंड में वायु से शुद्धि होती है और मृत्युलोक में क्रिया के द्वारा शुद्धि होती है। इसलिए जब तक हम उत्तराखंड में रहे तब तक नियम शिथिल थे, अब यहां आ गए तो नियम कानून का पालन करना पड़ता। तो मन के अंदर कोई शंका हो तो जरूर कपट बिना रखे हुए पूछ ले। अगर ऊपर ऊपर अंदर तो शंका हो रही गुरु जी ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऊपर ऊपर से भक्ति दिखा रहे तो तुम्हारा नुकसान है, गुरु का क्या बिगड़ने वाला। विवेकानंद जी ने दो घटनाएं बता देता हूं, रामकृष्ण परमहंस देव जी की परीक्षाएं की, वो पैसा नहीं छूते थे तो देखा ये नाटक करते कि नहीं, तो उनके बिस्तर के नीचे पैसे रख दिए, तो जैसे ही ठाकुर लेटे वैसे ही पैसा रख दिया, किसी ने बच्चे उठ के मार किया चाहो। विवेकानंद दुखी हो गए, प्रभु मैंने किया है ठीक करचो, मैंने आपकी परीक्षा की ठीक किया, 10 पैसे दे करके घड़ा खरीदते हो तो उसको टन टन करके बजा के देखते हो, जिसको अपना जीवन अर्पित करने जा रहे उसकी परीक्षा की तो कोई बात नहीं, तुमने निष्कपट बहुत कर, अभी खूब प्रसन्न हो ऐ रकम गुणों को भी। और अंतिम समय जिसके बाद उन्होंने परमात्मा मान लिया, उनको शंका हो अरे कई बार तो गुरु से भटक करके पवारी बाबा वगैरह के पास तक चले गए थे, हो गाजीपुर में भटके थे विवेकानंद जी, भटकन होती है इसीलिए के अमाया अनुवृत्तिया। गुरु जी लेटे हुए थे और अंतिम श्वास वो लेने जा रहे थे, तो विवेकानंद जी के मन में आया ये अपने को ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर है कि नहीं है, मेरी शंका का समाधान हुआ नहीं। तो ठाकुर एकदम अस्वस्थ अवस्था में थे, उठ के बैठ गए, उनका शोन नरेंद्र जो राम जो कृष्ण वही ये राम कृष्ण है। विवेकानंद जी की जीवनी में आया है कि अगर उस छोटे से कमरे में बम का विस्फोट हुआ होता तो मैं उतना चकित नहीं होता जितना गुरु के इन वचनों से हो गया। मैंने तो केवल अपने मन में रख करके उनसे जिज्ञासा की थी, जो राम जो कृष्ण वही राम कृष्ण। तब उनको परिपूर्ण श्रद्धा हुई और वो कहते थे, किसी ने कहा कि आपने रामकृष्ण परमहंस के नाम को उजागर किया। दक्षिण वाले यही मानते हैं, बंगाल के लोग ऐसा नहीं मानते हैं, उनको तब विवेकानंद को रामकृष्ण ने बनाया। तो किसी ने जब कहा तो ऐसे रेत की मुट्ठी उठा करके दिखाया, जितने रेत के कण हैं उतने विवेकानंद हमारे ठाकुर बना सकते थे, मेरे से उनको सेवा लेनी थी केवल एक बनाया। अमाया अनुवृत्या, निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करे, अनुवृत्ति करे, सेवा करे, और फिर तत्र भागवतान धर्मान शिक्षे, भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि इन्हीं साधनों से, यही माने जिन साधनों से आत्मदा आत्मदो हरि ही, जो सर्वात्मा भगवान है, जो अपने भक्तों को सर्वस्व प्रदान करते हैं, ये दो विशेषण यहां लगाए हैं। यही तुषेत आत्मा आत्मदो हरि, जो हमारी सबकी अंतरात्मा है, सर्वात्मा भगवान है, भक्तों को जो अपना आत्मदान दे देते हैं, ऐसे हरि तुषेत माने प्रसन्न होते हैं, निष्कपट भाव से, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ और प्रपंच से रहित गुरु की शरण में जाकर के निष्कपट भाव से भागवत धर्मों की शिक्षा प्राप्त करे, जिससे कि जो सर्वात्मा भक्तों को तो और सबको देते हैं, अपने आप को भी दे देने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री रमण बिहारी लाल की जय, राधे जय रमण बिहारी, जय हलधारी,
जय राधे
जय राधे जय रमण बिहारी, जय नंद नंदन जय हलधारी,
जय राधे जय रमण बिहारी, जय नंद नंदन जय हलधारी,
शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी,
शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी,
शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरु देव हम शरण तुम्हारी,
शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी,
जय राधे जय रमण बिहारी, जय नंद नंदन जय हलधारी,
जय राधे जय रमण बिहारी, जय नंद नंदन जय हलधारी,
श्री रमण बिहारी
लाल की जय।